किसी के साथ ताल्लुक के मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। आप देखिए कि एक ताल्लुक होता है किसी की तारीफ करने का, हम किसी की भी कर सकते हैं, चाहे हमारा उसके साथ कोई जाहिरी ताल्लुक हो के ना हो। बस हम कहीं गए किसी शादी में, हमने एक सिस्टर को फर्स्ट टाइम देखा, हम उनको देखते हैं, हमें वो अच्छी लगती हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, हम क्या कहते हैं कि वहाँ मैंने एक सिस्टर देखी, वो बहुत अच्छे अखलाक की थी। अब लिख के देख लीजिए अपने पास नोट्स में कि जब आपने किसी के अखलाक की तारीफ की, दैट्स इट, ख़त्म। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी आप तारीफ करें आप उससे मोहब्बत भी महसूस करें, ऐसे ही है ना। कई चीज़ों की तो बल्कि हम उनकी तारीफें कर रहे होते हैं कि जिनसे दिल में ज़रा बुग़ज़ और थोड़ा सा हसद आ रहा होता है कि इनको क्यों ये मिल गया। ठीक है, तारीफ जिसकी भी की जाए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उससे मोहब्बत भी करें। ठीक है, ये है सिर्फ तारीफ का ताल्लुक। चलिए एक और ताल्लुक होता है, वो है मोहब्बत का ताल्लुक। अब मोहब्बत किससे होती है? सबसे प्यारी मोहब्बत तो माँ और बच्चे की मोहब्बत है, भाई और बहनों की मोहब्बत है, और इसके साथ ही मोहब्बत किससे होती है? शौहर बीवी की, ये दुनिया में मोहब्बत है। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो उस वक्त क्या हो रहा होता है? कोई ज़रूरी है कि वो अच्छा भी हो, खूबसूरत भी हो? बताइए, क्या माएँ अपने बच्चे की खूबसूरती की वजह से उनसे मोहब्बत करती हैं? कोजे से कोजा बच्चा भी माँ को प्यारे से प्यारा लगता है। मारूफ बात आपने सुनी होगी कि एक दफ़ा एक बादशाह ने किसी से कहा कि जाओ ये चीज़ है शहर के सबसे खूबसूरत बच्चे को दे के आओ। और वो बंदा गया और सारे जगह घूम फिर के आखिर एक बच्चे को, रंग काला जिसका और जिसकी नाक बह रही, आंसू भी हैं, उसको लाके दे रहा। शे उसने कहा कि तुम्हें शहर में ये बच्चा अच्छा लगा? कहने लगा कि बादशाह सलामत, मुझे इससे खूबसूरत बच्चा पूरे शहर में कोई नहीं दिखा। बादशाह ने कहा, ये क्या बात हो गई, तुम्हारे चॉइस को क्या हो गया? कहा, असल में बादशाह जी, ये मेरा बच्चा, मुझे इससे प्यारा बच्चा नहीं मिला। तो आप देखिए कि जिससे मोहब्बत होती है कोई ज़रूरी नहीं कि वो प्यारा भी हो। हमारे हस्बैंड्स शक्लो सूरत के कैसे भी हों, लेकिन जब मोहब्बत हो गई तो बस फिर शक्लो सूरत कौन देखता है। और यही हालात शौहरों के दिलों में बीवियों के लिए भी होती है। ठीक है, तो दूसरा ताल्लुक़ क्या हो गया? मोहब्बत का ताल्लुक हो गया। एक तीसरा ताल्लुक होता है इंसानी ताल्लुकात में, वो है ज़रूरत का ताल्लुक। जिनकी हमें ज़रूरत होती है हम उनकी तारीफ करते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया। एक और मुहावरा भी है इस पे, और वो क्या है? हम कहते हैं कि मजबूरी में गधे को भी बाप कह दो। तारीफ ये करते हैं ना, बादशाह की कर लें, हुक्मरानों की कर लें, बड़े बड़े अफसरों की कर लें, हैं ठीक है। तो क्या पता चला कि इंसानी ताल्लुकात में हम जब भी किसी की मोहब्बत का दावा करते हैं, उसकी तारीफ़ों का दावा करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें ये सारे जज्बे इकट्ठे हों। किसी का ज़रूरत की बिना पे, किसी से हुस्न की बुनियाद पे, किसी से किसमें, लेकिन जब एक बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो इसमें ताल्लुक़ के ये सारे दर्जे आ जाते हैं। खूबसूरती में अहसन अलजमील उसका नाम है, इन्नल्लाहा जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। और उसकी खूबसूरतियों का परताव देखना है तो कायनात में फैली हुई चीज़ों को देखें। ठीक है, अब आप देखिए कि अल्लाह खूबसूरत है कि नहीं है। कैसे पता चलता है कि अल्लाह ताला खूबसूरत है कि नहीं? मैंने तो देखा ही नहीं उसको। तो इसको आप एक मिसाल से समझ लें, हम किसी के फ़न और उसके फ़न पारों की वजह से उससे मोहब्बत करते हैं ना। मतलब कोई आर्टिस्ट है, बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाता है नेचर की, और हो सकता है वो टांगों से कटा हुआ। आपको पता है आज के दौर का एक बड़ा मारूफ है कि टांगे नहीं है उसकी, पिकासो का भी नाम आपने सुना होगा। बस दफ़ा जो खुद खूबसूरत चीज़ें बना रहे होते हैं वो खूबसूरत नहीं होते, फितरी बात है, अल्लाह ने जो बना दिया जैसे बना दिया। अब आप सोच सकते हैं कि जब आप किसी की को खूबसूरत चीज़ देखते हैं तो उस वक़्त आपको कोई यकीन नहीं होता कि वो खुद भी खूबसूरत है कि नहीं। अल्लाह सुबहाना ताला चूँकि पर्दों के पीछे है, अब अल्लाह सुबहाना ताला की जात को हम देखेंगे कैसे उसके कायनात में फैले हुए हुसन की बुनियाद पे। अलहम्द के तीन मानी है ग्रामर में, अगर आप देख लेंगे ना, तारीफ, शुक्र और सना, दोहराना बार बार, विर्द की बुनियाद पे जब किसी की तारीफ करें। जब हम अल्लाह ताला के लिए शुक्र का लफ्ज़ उसकी तारीफ के मानों में करते हैं तो मतलब क्या होता है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने कायनात को इंतहाई खूबसूरत बनाया। ये माना अल्लाह का आपने समझना है ना, तो आप अल्लाह सुबहाना ताला की इस कायनात में जाएं। और मैं नहीं आपको कहती कि आप किसी खूबसूरत बाग में जाएं जिसको बहुत वेल ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। मैं आपको नहीं कहती कि आप उसके लिए किसी भी खूबसूरत मुकाम पे जाएं जिसको दिन रात वो मैनेज कर रहे होते हैं। जंगलों में जाके देख लें, पहाड़ों की चोटियों पे जाके देख लें, आप यकीन से कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतने खूबसूरत जंगली फूल, जिसको हमारी जुबान में जंगली फूल कहते हैं ना, वो मैंने अंदर जंगलों के अंदर वॉक करते हुए रास्तों में देखे हैं कि मैं हैरान होती थी। और मैं अक्सर जो साथी मेरे साथ होते थे, मैं उनसे कहती थी कि देखें हमारे घरों के डेकोरेशन पीसेस कहाँ होते हैं, ड्राइंग रूम में, लॉबीज में, सीढ़ियों पे, वजह जिधर से लोगों ने आना है गुजरना है। आप उस सिस्टर के बारे में क्या कहेंगी कि जो इंतहाई कीमती क्रिस्टल का डेकोरेशन पीस खरीदे और ला के अंदर ऐसी जगह पे रखते हैं क्लोजेट के अंदर कि जहाँ किसी की नज़र नहीं पड़ती। वो हमने रखे होते हैं संभाल के कि अब ये उतरेंगे तो फिर पहनेंगे, जगह ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा रखे होते हैं। लेकिन हम किस दिन किसी चीज़ की कीमत वसूल करते हैं, जिस दिन वो लोगों के लिए डिस्प्ले पे रखी हो और लोग उसको देखें और खुशी का इजहार करें, तारीफें फिर करें, फिर हमारी तारीफें करते हैं वो। फिर भी हम नहीं कहते कि अच्छा जी तारीफ उसकी है जिसने क्रिस्टल बनाया, नाम हमारा ही, सिर्फ पैसे लेके खरीद के, और हम कहते हैं मेरी चॉइस ही बड़ी अच्छी है। वो जिसने बनाया क्रिस्टल, वो गया, वो कंपनी जिसने उसका सांचा बनाया, जिसने उसमें कोई लाइटें लगाई, कुछ किया, सब पीछे, मेरी चॉइस ही बड़ी अच्छी है। कोई आपके मियाँ की तारीफ कर दे ना तो आप कहते हैं जी मियाँ किसके हैं, चूज किसने किया। एक तो मियाँ गरीब जो है ना, ये पूरे कोर्स में आपके साथ रहेंगे, आपको भूलने नहीं दूंगी। ओके, मैंने फील किया है कि हम किसी की तारीफ में अपना कहीं से कोना अटका लेते हैं, और इवन मियाँ की को खूबी है तो कहते हैं मैंने आपसे शादी तो की है इसलिए, है ना, या आप मेरे से शादी के बाद अच्छे हुए हैं। ये भी मियाँ औरतें, मुझे लिटरली याद है कि किसी के मियाँ की तारीफ हो रही थी तो कहने लगी आपको क्या पता शादी के वक्त ये कैसे थे, ये तो मैंने इतने साल में इनको सेट कर लिया है। तो क्या पता चला कि अल्लाह की तारीफें बंदा करता है इस कायनात में चीज़ों को देखकर, कितना कुछ उसकी ज़ात ने बनाया। दूसरा, अगर आप रंग देखें ना, तो वो है शुक्र का, शुक्र, और शुक्र तो फिर शक्कर ही है, ये तो अब ज़ुबानी याद हो जाएगा आपको, कि जिस तरह कड़वी चाय को चीनी मीठा करती है ना, शुक्र बंदे को मीठा कर देता है। शाकिर, शुक्र का ताल्लुक कौन सा है, जब बंदे को अल्लाह की नेमतों का एहसास होता है। दो मुख्तलिफ किरदार आपको अपने इर्द गिर्द दिखेंगे, एक वो किरदार है जो हर वक्त खुश, चहकते हुए, चीयर्ड, अच्छे कपड़े पहनते हुए, बच्चों से खुश, मियाँ से खुश, अल्लाह सुबहाना ताला की नेमतों पे जो लोग राजी होते हैं ना, बस आप लिख लीजिए कि वो है शुक्रगुजार बंदे। ठीक है, शाकिर कौन है, अल्लाह की नेमतों पे खुश। मैं आपको एक छोटी सी दावत देती हूँ, अपने नोट्स में आप एक लाइन खींच लें, जिस तरह हम दो पार्ट्स करते हैं ना, पार्ट वन पार्ट टू, ए बी, एक तरफ लिखिए शुक्रगुजार बंदा और दूसरी तरफ लिखिए ना शुक्रा बंदा। बस इन दोनों को आप टैली करते जाएं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरा अल्लाह ताला के साथ शुक्र का ताल्लुक कैसा है। शाकिर बंदा कौन सा होता है, हमेशा जो उसको मिलता है उस पे राजी है, थोड़ा भी मिले तो बढ़ा के बयान करता है। फिर शाकिर बंदे की एक पहचान क्या है, कि दूसरे लोग उसको पसंद बहुत करते हैं, ये एक साइड इफेक्ट है, पता नहीं चलता लोगों को कि हमें ये अच्छा क्यों लगता है, लेकिन बहुत हर दिल अजीज शख्स होता है। फिर अगली इसके अंदर लिखिए, हर वक्त लोग इसको मिलने, इसकी कंपनी में बैठना पसंद करते हैं, अमूमन इसके चेहरे पे चमक होती है। फिर इसी तरह आप देखिए कि ऐसा शख्स जो है ना, अपने इर्द गिर्द वालों की बहुत तारीफें करता है, मतलब अगर वो बहू है तो वो अपनी सास की बहुत तारीफें करेंगी, सास हैं तो अपनी बहू की बहुत तारीफ करेंगी, बहन है तो बहनों की बेटी, है तो माँ की बीवी, है तो शौहर की। ये एक सिम्टम होती है शाकिर गुजार बंदे की। फिर इसी तरह ऐसा बंदा जो होता है ये बहुत कम जहनी बीमार होता है। फिर नेक्स्ट शाकिर बंदे की एक अलामत, इसके अंदर साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स नहीं होते। ये ना कभी आम जहनी डॉक्टर पे के पास जाने की इसको ज़रूरत पड़ेगी, ना स्पिरिचुअल पे, और अल्लाह के हुक्म से ऐसा बंदा बीमार भी कम होता है। ख़ास तौर पे ऐसी बीमारियां जिनके सबब नहीं मालूम होते ना डॉक्टर्स को, जैसे हमारे यहाँ शुगर के बारे में कहते हैं, या ब्लड प्रेशर हाई होना, या दिल के अंदर कुछ बोझ महसूस होना, ये चीज़ें उसके अंदर नहीं होती। ठीक है, अब एक तरफ इसको रख लें, और इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे बंदे को अगर आप 1 पाउंड की भी चीज़ देते हैं ना तो वो निहाल हो जाता। वो सच्ची इतनी अच्छी, इतना मज़ा आया। आप इसको दाल भी दे देंगे ना तो वो ऐसे कहेगा जैसे आपने इसके घर मुर्गे मुसल्लम भेजा। अब इस तरह की सिम्टम्स आप खुद भी लिख लेंगे, जगह छोड़ दें। चलिए दूसरी तरफ, एक दूसरा किरदार, नाशुक्रा, दुखी, रोया धोया, शिकवे करने वाला, नाराज, माथे पे देवरियां, ताने देने वाला। आपको आ गया मेरा ख्याल? फिर इस बंदे की एक और अलामत क्या होती है कि लोग इसको मिलते हुए डरते हैं, ना ही सामना हो तो अच्छा। ईद के दिन भी जाएंगे ना इनको मिलने तो दुआ करते हैं, लग रहे घर ना मिले, बस केक या केक जो भी कार्ड है ड्रॉप करके वापस आ जाएं। क्यों? कि ये मिलेंगे ना कहेंगे आ गई हमारी याद आपको, अब कब आएंगे आप हमारे पास। अच्छा जी, आप तो ईद का चांद ही हो गए, आप तो मिलते ही नहीं हैं जी। तानों के तीर चुभोने वाला। फिर इसके बाद एक और अलामत होती है ना शुक्र इंसान की, और वो क्या है कि ऐसा बंदा हमेशा अपने आप को दुखी महसूस करता है। मजलूम, एक लफ्ज़ लिख लीजिए, मजलूमियत का शिकार। ऐसे बंदे के ऊपर अमूमन लोगों को तरस आता है, और वाकई जो लोग इनके करीब रहते हैं ना वो सोच में पड़ जाते हैं कि इस बंदे के ऊपर ज़िंदगी में इतने गम क्यों आ रहे हैं, और गम भी सारे ऐसे कि जिसकी कोई वजह नहीं नज़र आ रही। बस इसको और एलेबोरेट करते जाएं, मैं अपने आप को पहचानूं, मैं कहाँ खड़ी हूँ। एक बंदा दिन में कम से कम 17 बार कह देगा ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका दिल शुक्र से भर जाएगा। फिर उसको अल्लाह में भी कोई ऐब नहीं दिखेगा, और अल्लाह के बनाए हुए बंदों में भी कोई ऐब नहीं दिखेगा, और उसका हाल ये होगा कि अल्लाह जो तूने बनाया खूब बनाया, रदीतु बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह मैं तेरे रब होने पे राजी, तेरे साथ मेरा मामला बड़ा खुशी का मामला है। फिर इसके बाद एक तीसरा दर्जा जो अलहम्द का है वो है सना का, सा नून अलिफ, सनिया, तस्निया, उर्दू में सना का नाम हम बोलते हैं, दोहराने को कहते हैं, रेपिटिशन। इस दर्जे पे जब शुक्र या अलहम्द ढलता है ना तो फिर क्या होता है कि बंदे की जुबान पर हर वक्त अल्लाह का लफ्ज, अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाह, माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बारक इल्ला, जजाक अल्लाह, तवक्कल तो अल्लाह। आप लिख के देखते जाएं उसकी डिक्शनरी में एक सबसे ज्यादा कॉमनली यूज वर्ड अल्लाह, ये है सना। अपने गुण नहीं, हमने ये किया, हर चीज के अंदर उसका दिल बंद होने लगता है कि मैं ज्यादा ना कोई बढ़के मार के चला जाऊं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ऐसे बंदे की जुबान पे सबसे ज्यादा अल्लाह का चर्चा होता है, और इसका सबसे बेहतरीन इजहार वमन अहसन कौलम मिम्मन दा इलल्लाह, पढ़ेंगे सूरत हामिम सजदा में जाके, अल्लाह ताला कहते हैं कोई उससे भी अच्छा शख्स है कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए। उसका जीना मरना सोना जागना खुशी गम इस तड़प में कि मैं लोगों को अल्लाह से जोड़ूं। वो किताब की भी दावत देता है तो अल्लाह से जोड़ने की, वो क्लास की भी दावत देता है अल्लाह से जोड़ने की, वो अपने तजुर्बात भी बयान करता है तो अल्लाह से जोड़ने के। ना उसको किसी नाम से, ना मसलक से, ना उस्ताद से, ना किसी गिरोह से, किसी छोटी कॉज पे तो वो राजी नहीं होता, और उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत में इतना डूब जाता है कि लोग उसको रियाकार भी समझने लग जाते हैं, दिखावा करता है हर वक्त ही अल्लाह अल्लाह वाले। हाँ, वो हाथों में तस्वीरें लेके नहीं बैठते कि दूर से लोग हमें देख के समझ आए कि बस ये बड़े नेक हैं। आजजी के साथ, हम्बलनेस के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह 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 उसकी ज़ुबान पे आता है। क्या आप कह सकते हैं कि उस बंदे के पास हर वक़्त एक नजराना होता है और वो मोहब्बत का नजराना होता है और वो अल्लाह के सिवा किसी को देना ही नहीं चाहता। सूरत बकरा की आयत 165 में आप एक सिफत पढ़ेंगे ईमान वालों की कि वल्लज़ीना आमनू कौन होते हैं? लोगों में बाज़ ऐसे हैं कि जो दूसरों को अल्लाह का शरीक बना लेते हैं, लेकिन वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बल्लाह, ईमान वाले अल्लाह की मोहब्बत और खुब में सबसे ज़्यादा शदीद होते हैं। और काफिर और जालिम जब देखेंगे अल्लाह क़यामत के दिन अज़ाब को, तो मान जाएंगे कि सारी कुदरत अल्लाह की है। इस आयत में अगर आप देखें तो इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह कहने के नतीजे में जो शख्सियत आती है ना, वो सामने निकलती है। और वो क्या है? बंदे मोमिन। आप कह लीजिए कि बंदे के पास जितनी नेमतें हैं ना, या जितनी सिफात हैं, उसमें सबसे कीमती चीज़ मोहब्बत है। लिख के देख लें, सब कुछ आपके पास, अच्छा घर है, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे खाने हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते, तो आप कहते हैं आ जाओ बेटी वापस, ये ठीक लोग नहीं हैं, ये तुम्हारी कदर नहीं करते, छोड़ो कपड़े जूतों को, तो वो तो इधर भी बड़े थे, तुम्हें ये मोहब्बत नहीं दे रहे। एक ईमान वाले की जिंदगी में सबसे कीमती चीज उसके पास मोहब्बत है। और एक सच्चा मोमिन मोहब्बत का ये नजराना अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को देना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। फिर इससे वो शख्सियत पैदा होती है जो सूरत तौबा में हम जाके पढ़ेंगे कि अगर तुम्हें अपने घर, माल, औलाद, घर, कारोबार, ये चीज़ें अहब इलैकुम मिन अल्लाह व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्री, अगर तुम्हें अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते के कामों से ज्यादा ये दुनिया की चीजें पसंद है, तो इंतजार करो कि अल्लाह फिर तुम पे कैसे अजाब का हुक्म लेके आए कि चीखें निकल जाएंगी तुम्हारी। अल्लाह क्या चाहता है? अहब, मोहब्बत की इंतहा। ये नहीं कहता दूसरों से प्यार ना करो, लेकिन कहता है सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करो। देखिए शिर्क के वो बुतों वाले अब सिलसिले छोड़ दें, अभी वो तो जाके पढ़ेंगे कहीं सूरत अलनाम और उसके इर्द गिर्द की सूरतों में। इस वक्त का जो मेरा और इर्द गिर्द के लोगों का, दुनिया के लोगों में शिर्क है ना, वो मोहब्बत का शिर्क। आज हमने अल्लाह वाली मोहब्बत दूसरों को दी, और वजह पता है इसकी क्या है? इंसान की फितरत में है कि मैं किसी से मोहब्बत करूं, ठीक है? अब जो चीज़ सामने नजर आती है जाहिर प्रस्त, उससे मोहब्बत करने लगते हैं। आज चूंकि मटीरियलिस्टिक दौर है ना, मादा प्रस्ती है, कुछ चीज़ें सामने दिखती हैं बहुत पम्प एंड श्योर एंड ग्लैमरस, बस लोग उसको बड़ा समझ के उसके साथ मोहब्बत शुरू होते हैं। बाज़ दफ़ा वो मजहबी रहनुमाई होते हैं, बाज़ दफ़ा वो मादी चीज़ें, किसी की गाड़ी की वजह से उससे मोहब्बत, किसी के हाथों में पहने हुए कंगनों की वजह से उससे मोहब्बत, किसी के वॉलेट की वजह से उससे मोहब्बत। लेकिन जो ईमान की सतह पे जीता है ना, वो जाहिर परस्त नहीं होता। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। जैसे आप देखिए कि ये दीवार है ना, अब ये तो प्लेन दीवार है डिसेंट सी, इसके ऊपर खूबसूरत चमकता हुआ वॉलपेपर लगा दें आप। एक बंदा जाहरी तौर पे आएगा, सिर्फ हम इसको ऐसा करें कि ऊपर ढांचा अंदर कच्ची दीवार डाल के उसके ऊपर सिर्फ एक चमकता हुआ वॉलपेपर लगा दें, और इस तरफ हम एक काम करें कि ऊपर से ये प्लास्टर भी हटा दें और मजबूत सीमेंटेड वॉल दिख रही हो, ये है उस दीवार की अंदर की कैफियत। जाहिर में इस पे कोई खूबसूरती नहीं है। दो लोग इस हॉल में आए, एक आते ही इधर देखेगा, ओ वाह, उस उधर उस हॉल की तो दीवारें भी चमकती हैं। एक दूसरा आएगा जो जरा मिच्योर होगा, वो कहेगा ये वॉल पे चमक है, वो आएगा ना तो करेगा टक टक करेगा, तो वो पास बैठे को कहेगा ये ऊपर सिर्फ वॉलपेपर लगा हुआ है, अंदर कुछ नहीं खोखला, अगर इजाजत दो तो एक ठोकर मार के दिखाऊं, ये तो अभी सुराख हो जाएगा। फिर वो इधर आएगा, फिर देखेगा इधर क्या है, टक टक टक, वो कहेगा ये मजबूत है। चॉइस दे दी जाए कि ये दीवार बनाए इस हॉल की सारी या ऐसी बनाए, तो जाहिर परस्त कहेगा ये बनाए, और जो असल परस्त है वो ये बनाएगा। बस ये असल परस्त जो है, ये है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने वाली शख्सियत। चीज़ों के अंदर जाता है, चमकती हुई चीज़ों को सोना नहीं समझता, वो कहते हैं ये चमक रही है, ये बताओ चमकाने वाला कौन है, ये नेमत है तो ये नेमत देने वाला कौन है, तुम तो मालिक को वक्ती तौर पे इन नेमतों को वापस ले जाने वाला कौन है। फिर वो ये कहता है कि अगर देखो ये नेमतें हम मेरी होती तो मेरे से छिनती तो ना, तो आप सोच में पड़ जाएंगे, इस लफ्ज़ की गहराइयों में डूबते जाएं, वक्त पूरा हो जाएगा लेकिन आप अल्लाह की तारीफें कर नहीं पाएंगे। तभी तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वाइन तो नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो गिन नहीं सकते, और अगर तुम्हारे कलम तुम्हारी दरख्तों की लकड़ियां कलम बन जाएं और दरियाओं का पानी स्याही बन जाए और ऐसे 7 समंदर और आ जाए, सूरह लुकमान और सूरह कहफ के आखिर में आप पढ़ ले जाके, कहा कि सब खत्म हो जाएंगे लेकिन रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हर नेमत वाले के पीछे नेमत देने वाला है। देखिए ना, अगर मेरी चीज हो, कोई भी चीज मेरी है तो तब्दीली का इख्तियार है ना। मिसाल आपको दे देती हूँ कि जैसे लेट्स सी, अगर ये फोन मेरा है, मैं कहती हूँ ये मेरा फोन है, मैं अल्लाह कहता है ये मेरा नहीं है, मालिक का देना है, मालिक का। कैसे? ये फोन अगर मेरा हो, सच बताइए कभी मैं इस पे एक धब्बा डलने दूं, इसमें एक दरार पड़ने दूं, कभी भी ये मेरे हाथ से गिर के टूटे? कभी भी नहीं हो। और ये हमेशा मेरे पास रहे, कभी ये चोरी हो, कभी ये गुमे, कभी कोई दूसरा इसको मेरी मर्जी के बगैर यूज करे? नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा। लेकिन अमली तौर पे हम देखते हैं हमारे अपने हाथ से चीजें गिरती हैं, टूट जाती हैं, तो इसका अंदर के मेरा नहीं है। जैसे आप किसी का घर किराए पे ले लेते हैं ना, कुछ दिन के लिए आप मालिक मकान हैं जितने दिन के आपने पैसे दिए, लेकिन क्या आप वहां की दीवारें हिला सकते हैं? आप वहां के दरवाजे तोड़ें, इधर उधर करें? तो मैं और आप इस दुनिया में जिन चीजों को ओन करते हैं, जिसमें सब चीजों को छोड़ दें, मैं खुद, मुझे किस बात का मान है? अगर मेरा हुसन मेरा अपना होता तो उम्र के साथ ढलने क्यों लगता हमारा हुसन? अगर ये विजन, ये आंखें, ये बसारत मेरी होती तो वक्त के साथ ग्लासेस क्यों लग जाते? हम सब देखते हैं कि दुनिया में सारी चीजें चली जाती हैं, लोग तो बड़े तपाक से शादी वाली तस्वीर लगाते हैं ना अपने ड्राइंग रूम में, आओ देखो कभी हम जवान थे, और शर्म से सर झुक जाता है जब लोग कहते हैं ये आप है? मैं कहती हूँ लोगों को समझ क्यों नहीं आती, बेइज्जती करवाते हैं अपनी, ये अम्मी आपको अब क्या हो गया, अबू ये कौन सी औरत है जो आपके साथ थी बैठी हुई? तो आप कहते बेटा कभी ये तुम्हारी माँ ही थी, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उससे मोहब्बत करें, ये जिंदगी की मेराज है। कुछ ना और करें, आप अल्लाह से मोहब्बत करें, मोहब्बत आपको सलीका सिखाएगी, मोहब्बत आपको अमल करना सिखाएगी, मोहब्बत आपको अदब सिखाएगी, और मोहब्बत आपको कुर्बानियाँ देना सिखाएगी, मोहब्बत आपको हिजरतें करना सिखाएगी, मोहब्बत आपको महबूब के रास्तों पे चलना सिखाएगी, मोहब्बत आपको सिखाएगी कि जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, और मोहब्बत सिखाएगी कि कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मोहब्बत के बगैर मुमकिन ही नहीं है। आज मेरे से नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती, मेरा बच्चा आज क्यों नहीं अल्लाह का बनता, इसलिए कि मोहब्बत नहीं दी उसको।